आजकल यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कॉन्फ्लुएंस अ फेस्टिवल ऑफ इंडिया हो रहा है और हम इसके अंतर्गत आए कलाकारों के साथ आपका परिचय भी करा रहे हैं। तो आइए आज आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी अद्भुत सूफियाना आवाज की मालिक सोनम कालरा से, जिनके व्यक्तित्व या जिनके प्रोजेक्ट के लिए कुछ भी कहना सच में मुश्किल लगता है। प्रोजेक्ट है द सूफी गॉस्पेल प्रोजेक्ट, शांति, विश्वास, श्रद्धा और भक्ति का संदेश लिए।
ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, कहीं कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में।
सोनम जी, आपका प्रोजेक्ट है सूफी गॉस्पेल प्रोजेक्ट, बिल्कुल अलग सा प्रोजेक्ट है, कह सकते हैं कि संगीत के अलग अलग रंग, एक ही संदेश, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए।
सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया और मेरा इंटरव्यू ले रही हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में और इस फेस्टिवल के बारे में।
ये हमारे लिए सम्मान की बात है सोनम जी।
थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि इस फेस्टिवल में का हिस्सा होना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो टीम वर्क आर्ट्स और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इंडियन एम्बेसी ने ऑर्गेनाइज किया है, ऐसे ही फेस्टिवल्स के जरिए हमें मौका मिलता है, हम आर्टिस्ट को मौका मिलता है कि हम अपनी कला शेयर करें और उससे भी आई थिंक ज्यादा जरूरी अपनी आवाज, अपनी सच्ची आवाज को एक प्लेटफॉर्म मिलता है, हमारी आवाज को, कि जो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं अपनी कला एज वेल एज आवर मैसेज। सो वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट। और सूफी गॉस्पेल प्रोजेक्ट जिस तरीके से उसका नाम है, ये सूफीज्म एंड गॉस्पेल का एक मिश्रण है, लेकिन उससे कई ज्यादा है, उसमें भक्ति संगीत भी है और सब ऐसे ट्रेडिशंस और बिलीफ्स हैं या एक फेथ का मिश्रण है। इस वजह से हमने इसका मिश्रण किया कि हम चाहते थे कि इन सब धर्मों का मिश्रण, इन सब बिलीफ्स का मिश्रण करके हम एक यूनिफाइड वॉइस, एक आवाज बनाएं जिसके जरिए हम ऊपर वाले को पुकार पाए या ये दिखा पाए कि हम सबकी आवाज या तरीके अलग होते हैं ऊपर वाले को पुकारने के, लेकिन अगर हम ध्यान से और गौर से सुने तो हम सब वही चीज कह रहे हैं और उसी ऊपर वाले से को पुकार रहे हैं।
जी, यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या आप बचपन से गॉस्पल म्यूजिक सुन रही थी, इसका रुझान आपका इस तरफ कैसे हुआ?
बचपन से गॉस्पल म्यूजिक नहीं सुन रही थी।
अच्छा।
बचपन में जरूर बहुत म्यूजिक मेरे घर में, मतलब मेरी माँ को बहुत शौक था, मेरी अम्मी को बहुत शौक था म्यूजिक का, तो मेरी एक बचपन की बहुत क्या कहते हैं बहुत प्रेशियस एक याद है, जिससे मतलब मम्मी की गोद में बैठ के, करीब 3-4 साल की थी मैं, तो उनकी गोद में बैठ के वो बेगम अख्तर की एलपी चलाती थी और मुझे बेगम अख्तर की आवाज सुनाई देती थी, तो एक बहुत एक सुकून महसूस होता था उस उम्र में भी। तो और शुरू से मम्मी ने हमारे घर में म्यूजिक रहा है और म्यूजिक टीचर्स आए हैं, मुझे एक्सपोजर मिला है, स्कूल में भी बहुत म्यूजिक में मैं इन्वॉल्व थी, लेकिन और बचपन में मतलब मैं बहुत फॉर्चुनेट रही हूँ कि कुछ ऐसे गुरु और टीचर्स मुझे मिले हैं जो सबसे पहले अच्छे इंसान थे और उन्होंने बड़े प्यार से मुझे, बड़े प्यार से एक तरीके से पाला है, तो वो बहुत बड़ी बात रही है मेरे लिए। बट माय मेन गुरु, मैं आज भी बोलती हूँ सबको, मेरी सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्रेशियस गुरु मेरी माँ ही रही है, क्योंकि उन्होंने मुझे जिंदगी के बारे में सिखाया है।
क्या बात है जी।
तो आपने पूछा कि सूफी गॉस्पेल प्रोजेक्ट की शुरुआत कैसे हुई। गॉस्पेल म्यूजिक का एक हिम अमेजिंग ग्रेस कहलाया जाता है, उस नाम से जानते हैं लोग उसे, वो हमेशा पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में घूमते रहता था, उसकी धुन घूमती रहती थी और मैं उसे गाती रहती थी। और मेरा बहुत दिल था कि मैं गॉस्पेल म्यूजिक सीखूं, तो मैं जब सिंगापुर गई थी एक बारी छुट्टी पे गई थी, 5 दिन की छुट्टी थी, और एक म्यूजिक, पहले दिन एक म्यूजिक स्कूल मैंने चलते चलते पार्क क्रॉस किया, तो मैंने सोचा क्यों ना अंदर जाके पूछ लूं अगर उनके पास कोई गॉस्पेल म्यूजिक टीचर है, क्योंकि इंडिया में तो थे नहीं कोई, या दिल्ली में तो खैर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा इससे बेहतर हॉलीडे हो भी क्या सकता है कि मैं म्यूजिक करूँ अपनी छुट्टी पे और इसको मैं इतना पसंद करती हूँ। तो अंदर गई मैं उस रूम में, तो उन्होंने बोला जी हमारे पास गॉस्पेल म्यूजिक टीचर है। मैंने बोला ठीक है, मैंने एक लेसन के लिए साइन अप कर लिया। जब मैं कमरे में गई तो एक बहुत जवान लड़की, मुझसे भी कुछ साल छोटी, लाल, उसके एब्सोल्युटली रेड हेड ऑस्ट्रेलियन लड़की वहां बैठी थी, मेलबर्न की लड़की आप, और वो वैसी थी और उसने बोला आई एम गोइंग टू टीच यू. उनका नाम है एशली क्लेमेंट. एक स्टूडेंट थी वहाँ पे, वो नसाल इंस्टीट्यूट पे में पढ़ रही थी उस टाइम. और एशली से सीखने का एक कुछ और ही मजा था, क्योंकि एशली ने, क्योंकि वो खुद भी स्टूडेंट थी, तो एशली का एक जो एटीट्यूड था सीखने का, क्योंकि मेरे गुरुज जो थे वो, जिनसे मैं सीखती थी, वो काफी पहुंचे हुए गुरुज थे, तो उनका तरीका खैर सिखाने का अलग था कि आप अपने गुरु को फॉलो करो. एशली का जो तरीका था वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि वो एज अ स्टूडेंट सीख रही थी, तो कभी ना कहीं यू नो कहीं डर जाती थी या बोलती थी कि नहीं एशली ये नहीं हो पाएगा, तो वो कहती थी नहीं सब हो पाएगा, तुम बिल्कुल कर पाओगी. इस तरीके से, क्योंकि वो मुझसे छोटी थी और वो मेरी फ्रेंड भी बन गई, तो इस तरीके से जब हमने इकट्ठे ये किया और एक म्यूजिकल एक्सचेंज ऑलमोस्ट हुआ, क्योंकि मैं भी अपने म्यूजिक उनके साथ मैं भी अपना म्यूजिक शेयर करती थी, तो ये बहुत स्पेशल तरीका था लर्निंग का, क्योंकि उसका जो पॉजिटिव एटीट्यूड था और यंग एक फ्रेश आउटलुक था वो भी आया इस टीचिंग में. और फिर जब मैं वापस आई, मैंने गॉस्पेल गाना शुरू किया, और जब मैं गॉस्पेल गाती थी तो सब मुझे कहते थे कि लेकिन तुम तो सिख नहीं हो, तुम सिख रिलीजन को बिलोंग करती हो, तुम ये और इनको ये कहते थे क्रिश्चियन भजन क्यों गाती हो. मुझे हंसी आती थी, मैं बोलती थी क्योंकि ऊपर वाले को पुकारने का कोई स्पेशल मतलब, ये रूल किसने बनाया है कि मैं ऊपर वाले को सिर्फ एक ही तरीके से पुकार सकती हूँ. अगर मेरा मन कहे चाहे तो मैं एक ओंकार कह के पुकार सकती हूँ, अमेजिंग ग्रेस गा के पुकार सकती हूँ, मैं किसी भी तरीके से जो मुझे और मेरे दिल को मेरी सच्चाई को सही लगे, मैं उस तरीके से ऊपर वाले को पुकार सकती हूँ. और जब ये सोच मेरे दिमाग में शुरू हुई, मुझे लगा कि इसमें कुछ था. मैं जिस तरीके से हमारा घर था, बहुत लिबरल एक हमारी एजुकेशन रही, माँ बाप बहुत खुले दिल के थे, खुले दिमाग के थे, तो उन्होंने, मेरी दो बड़ी बहनें हैं और मेरे फादर हमेशा मुझे कहा करते थे कि ये मत भूलना कि यू आर नॉट, ये बोलते थे कि यू आर नॉट इक्वल टू मैन, यू आर बेटर देन मैन. हमें बताते थे कि तुम कुछ भी कर सकती हो. और एक फ्रीडम ऑफ थॉट एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमें दिया गया था घर में, कि जो भी तुम करो सच्चाई से करो, इंटेग्रिटी से करो, सिंसियरिटी से करो, एंड अपना पूरा दिल लगा के करो. तो ये हमारी इट वाज द वे आई ग्रू अप. और ये एनीवे ये गॉस्पेल करते करते जो ऑलरेडी लोगों को अजीब लगता था कि ये क्या कर रही है, और मतलब इंटरेस्टिंग होता था, लोग आते थे सुनने के लिए और हमेशा ये सवाल मुझसे पूछते थे, अप्रिशिएट भी करते थे लेकिन ये सवाल जरूर पूछते थे. और फिर एक ऐसा मौका आया कि मुझे हजरत दिल्ली में निजामुद्दीन की दरगाह है उसी के पास में एक छोटी सी और दरगाह है हजरत इनायत खान की दरगाह.
अच्छा.
तो उनके 100 ईयर सेलिब्रेशन के लिए मुझे बुलाया गया गाने के लिए. एक सिख लड़की एक जो क्रिश्चियन म्यूजिक गाती है उसे एक सीमिंगली इस्लामिक स्पेस में बुलाया जा रहा है
जी.
तो मुझे लगा कि ऊपर वाला यूनिवर्स सब मुझे कुछ कह रहे थे कि कुछ करो
जी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी जी.
हाँ, कि कुछ समझो, तुम्हें ये जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है तुम्हें किस वजह से मिल रही है. और आप मानेंगे नहीं, ये बिल्कुल सच बात है. मैं मुझे भी याद है, मेरी आंखें बंद थी और मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं पियानो प्लेयर के साथ गाती थी, एक पियानिस्ट रहता था और मैं वोकल करती थी. पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में सारंगी आई, आंख बंद थी, सारंगी की आवाज सुनाई दी मेरे दिमाग में, और मुझे लगा कि ये जरूर मुझे सारंगी लानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए. और जिस दिन मैंने सारंगी वादक को फोन किया कि आप आए एक जैम करेंगे, वो आए मेरे घर और मैं अबाइड विद मी गा रही थी, जो महात्मा गांधी जी के फेवरेट हिम हुआ करती थी. इनफैक्ट रिट्रीट में भी रिपब्लिक डे में बजाते हैं वो बैग पाइपर्स
जिसको.
तो वो जब उन्होंने मेरे साथ में बजाना शुरू किया और मेरे पियानिस्ट भी थे वहां पे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और खुशी भी बहुत हुई और आंखों में आंसू भी, मतलब सब एक समय पे हुआ. तो मुझे लगा कि कुछ बिल्कुल सही कर रही हूँ और एक ऐसा इमोशनल और इंट्यूटिवली जानी मैं कि कुछ सही है इसमें. उसके बाद जब मैं वहां से निकली तो मुझे लगा मेरे दिमाग में ये नाम भी आया, सूफी गॉस्पेल प्रोजेक्ट, वहीं पे मुझे ये नाम मेरे दिमाग में आया. फिर खैर उसके बाद मेरी अम्मी काफी बीमार रही कुछ 8 महीने तक और फिर उनका देहांत हुआ. उनके जाने के बाद वो एक म्यूजिक संस्थान चलाती थी, तो उसी संस्थान ने बोला कि आप उनके लिए एक ट्रिब्यूट कॉन्सर्ट करें. کیونکہ وہ حضرت عنایت خان کی کانسرٹ کے لیے آئی تھی, تو انہوں نے بولا تھا کہ یو نو سنم جب یہ سارے گانے ختم ہوں گے سب ریکارڈ کرو گی تو یہ میرے آئی پیڈ پہ ضرور ڈالنا. اور دو گانے میں نے ڈال دیے تھے ان کے آئی پیڈ پہ, باقی نہیں کر پائے. بٹ انہوں نے پورا کانسرٹ سنا تھا. تو ان کے دیہانت کے بعد جب ہم نے کانسرٹ کیا کنٹریبیوٹ کے لیے, اور ان کے ایک مہینے کے جانے کے بعد تو میرے میوزیشنز نے بھی بولا کہ آپ اسے دنیا کو پریزنٹ کریں, اس میں بہت طاقت ہے. تو سوچا کہ چلو یہ پریزنٹ کریں گے, کیونکہ جو میں کہنا چاہتی ہوں اباؤٹ ایکوالٹی اینڈ اباؤٹ سیکولرزم اینڈ ایکسیپٹنس اینڈ ٹالرنس آف فیتھ, وہ مجھے کہنا چاہیے. اور جب پہلا کانسرٹ ہوا تو ہمیں بہت ایک وارم رسپانس ملا, اور ایک کافی بزرگ لیڈی, پتا نہیں کیسے مجھے کبھی لگا کہ اوپر سے یہ یو نو یہ میسج آیا, انہوں نے بولا, مجھے ابھی بھی یاد ہے کانسرٹ کے بعد آڈینس کی تالیاں جب ختم ہوئی سب کھڑے تھے اور ایک آواز سنائی دی آڈینس میں, اور انہوں نے بولا مائی ڈیئر اسٹریٹ فرام یور لپس ٹو گاڈز ہارٹ.
کیا بات ہے,
اٹ از ویری بیوٹیفل ایکچولی.
This is amazing.
لوگوں کا جو پیار رہا ہے has been amazing. I mean, ہم نے ٹریڈیشنل صوفی نہیں پریزنٹ کیا لوگوں کو. مجھے لگا کرٹیسزم ملے گا کہ تم کیا کر رہی ہو, نہ ٹریڈیشنل گوسپل ہے نہ ٹریڈیشنل صوفی ہے. بٹ جس طریقے سے لوگوں نے جس پیار سے اور کھلے پن سے انہوں نے یہ ایکسپریشن ایکسپٹ کیا ہے, تو ہر جگہ جہاں ہم نے پرفارم کیا ہے مجھے آئی ایم اوورویلمڈ بائی دی گڈنس اینڈ کائنڈنس آف پیپل.
جی, آپ کے سنگیت نے سب کے دلوں کو چھوا, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں رہا نا.
لوگوں نے مجھے بہت اپنے پیار سے بہت چھوا ہے, تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے لوگوں سے. کانسرٹ کے بعد بھی جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو بہت پیار سے لوگ ملتے ہیں, تو بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ سن رہے ہیں, ہم کہنے کی کوشش کر رہے ہیں.
جی, میں آپ سے پوچھنے جا رہی تھی کہ کوئی ایک ایسا انوبھو ہوگا جو بالکل آپ کے دل کے قریب ہوگا. میرے پوچھنے سے پہلے ہی آپ نے جو بات بتا دی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بڑی اور کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ آپ کا پہلا کانسرٹ اور اس میں جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے وہ روحانیت محسوس کر لی, اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے.
بہت بہت خوبصورت بات ہے. اور ابھی ابھی میں ساؤتھ افریقہ سے واپس آئی اور ساؤتھ افریقہ میں ابھی پرفارم کیا, تو ایک اور بات کسی نے کہی ہے جو میرے دماغ میں بہت ابھی کھٹ,
وہ بھی ہمیں بتائیے نا. جی,
تو انہوں نے یہ بولا دیٹ سونم ٹوڈے وین آئی ہرڈ یور میوزک آئی اسپینٹ اے فیو منٹس ود گاڈ.
آپ کی اب یہ باتیں سن کر میں انتظار کر رہی ہوں کہ آپ جب یہاں آئیں گی اور ہم وہاں پر بیٹھ کے آپ کو سنیں گے. ایک بالکل الگ ڈھنگ کا سنگیت ہے, یہ ایسا مشرن ہے جو شاید ہم کبھی سن نہیں پاتے.
میری تو یہی کوشش رہتی ہے کہ بس جو بھی ہم کریں ہم سچائی سے کریں, اوپر والے کو یاد کر کے کریں, اور اس میسج کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. پیپل وانٹ دی سیم تھنگ, دے جسٹ سم ٹائمز دے وانٹ اٹ ان ڈیفرنٹ ویز بٹ دے وانٹ دی سیم تھنگ.
بالکل سونم جی, ابھی بھی دل نہیں بھرا میرا آپ سے باتیں کر کے. میرا من کر رہا ہے کہ میں بس آپ کی باتیں سنتی رہوں.
جی, مجھے بہت اچھا لگا انیتا جی. میری ماں کا نام بھی انیتا تھا, جب آپ نے بولا بھی دس از انیتا اسپیکنگ انسٹنٹلی آئی فیلٹ اے کنیکشن ود یو.
آپ نے اتنا مان دے دیا مجھے, اس کے لیے میں آپ کو بہت بہت دھنیواد کروں گی, آپ کا شکریہ بھی. اور بس اب میں آپ سے ملنے کے لیے اتارو ہی ہوں ایک طرح سے, اور ابھی آپ کا بہت بہت دھنیواد کرنا چاہوں گی.
تھینک یو سو مچ. اور بس یہ میلبرن کے لسنرز سے یہ ہے ریکویسٹ کہ پلیز آئیں اور ہمارے ساتھ ہمارا میوزک شیئر کریں.
Where is death sting? Where grave thy victory?